ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَعَنَ أَبِي سَيِّدِ ذِي الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है मालिक इब्ने सिनान और उनकी वालिदा का नाम है उम्मे सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके वालिद भी सहाबी हैं और उनकी वालिदा भी सहाबी हैं। उनकी वालिदा उम्मे सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف عنوانات باب کے قائم کیے ہیں، ایک باب مستقل انہی کے لیے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے اور اس میں روایت پیش کی ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بہت چادریں آئیں رنگین جو عورتوں کے لیے اوڑھنی بن سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا، آخر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا امیر المومنین یہ چادر آپ نبی کریم सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी यानी आपकी नवासी हजरत उम्मे कुलसुम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहबजादी हजरत अली की, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में थी, उनको दे दीजिए। उस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी हकदार तो उम्मे सलीत हैं, जो ग़ज़वा उहुद के मौके पर मुजाहिदीन को मशकीज़े में पानी भर भर ला कर पिलाया करती थी। यही उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, और उनके वालिद हज़रत मालिक इब्न सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ग़ज़वा उहुद के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसार के ऊपर जख्म आया और उसमें से खून बहने लगा, उस मंजर को देखकर ये हजरत मालिक इब्ने सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैन हो गए। तेजी से आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से बहने वाले उस खून को अपनी जबान से चाट लिया। वो खून उनके मुंह में था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुज्जहू, इसको निकाल दो बाहर। उन्होंने जवाब में कहा वल्लाह ला अमुज्जहू अबदा, अल्लाह की कसम मैं नहीं निकालूंगा। चुनांचे उसको निगल गए। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खालत दमहू दमी लम तमस्सहु नार, जिसके खून के अंदर मेरा खून मिल गया जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। ये हजरत मालिक इब्न सिनान, और फिर वो उसी ग़ज़वा उहुद में शहीद भी हुए हैं। ये हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जब ग़ज़वा उहुद पेश आया, जो सन हिजरी 3 में पेश आया है, तकरीबन 13 साल की थी। उनके वालिद जब शहीद हुए हैं, चुनांचे ग़ज़वा उहुद के मौके पर बहुत से वो सहाबा जिनकी उम्रें 15 साल की नहीं थी, उन्होंने अपने आप को ग़ज़वे में शिरकत के लिए पेश किया। आप हज़रात ने हिकायत सहाबा में सुना होगा ये किस्सा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उम्रें 15 साल न होने की वजह से उनको ग़ज़वे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। उन्हीं में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, और उनके वालिद जब ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि शाम को हम लोग मैदान उहुद की तरफ निकले तो रास्ते में मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार उहुद की तरफ से मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे हैं, सहाबा साथ में। तो मैं आपके करीब हुआ तो मुझे देख करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा साद यानी साद हो, तो कहा मैंने जवाब में अर्ज किया नाम बेअबी वहूंगी कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जी हाँ। तो चूंकि इनके वालिद शहीद हुए थे तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजारक अल्लाह फी अबी, तुम्हारे बाप के मामले में अल्लाह ताला तुमको अजर और सवाब अता फरमाए। हजरत अबू सईद खुद ही फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को बोसा दिया, आप घोड़े पर सवार थे ये नीचे थे, आपके घुटने को बोसा दिया, और फिर जो है मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसार पर जख्म के निशान हैं, आपकी पेशानी पर है, आपके होठ मुबारक के ऊपर है, और उसमें वो जो काला निशान भी है। क्योंकि जैसा कि बुखारी की रिवायत में है, ग़ज़वा उहुद ख़त्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को हज़रत फ़ातिमा رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کے اندر پانی لے کر کے آئے اور پانی ڈال رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کو دھو رہی تھی، لیکن پانی لگنے کے بعد ان زخموں کا خون بجائے بند ہونے کے اور بڑھ گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر کے اس کی راکھ ان زخموں کے اندر بھر دی۔ راکھ کی خاصیت ہے کہ وہ خون کو بند کر دیتی ہے، اسی کا وہ کالا نشان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ یعنی کم عمر صحابہ میں کیا جاتا ہے، ابھی جیسا کہ بتلایا غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 13 سال کی تھی، اسی لیے ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی، تو لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ان بڑے بڑے صحابہ سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی تھی ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 11-12 سال کی تھی، بہت زیادہ نہیں تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ہم عمر کچھ صحابہ سے یوں کہا، بھائی دیکھو ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علمی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا عمر کی کمی اور چھوٹے پن کی وجہ سے، اب بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے وہ بھی موجود ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان اکابر صحابہ سے علم حاصل کیا، اور ایک زمانہ وہ آیا بعد میں کہ علم اور مسائل کے سلسلے میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کا بڑا جن حضرات صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں، جن کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں ان کی مخصوص زبان میں مکثرین کہا جاتا ہے۔ مکثر محدثین اس صحابی کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ روایتیں نقل کی ہوں، ایسے 7 ہیں، ایسے صحابہ 7 ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے، اور باقاعدہ لوگ ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، بہت ساری روایتیں ان سے منقول ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا بڑے صحابہ کے مقابلے میں وہ کم عمر تھے، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر اندر تھے، انہوں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اگر کسی کے یہاں جائیں تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں نہ گھس جائیں، یہ تو ہمارا ماحول ہے کہ جو آیا دروازہ کھول کے گھس گیا، گھر والے کو بھی شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم بھی اپنے گھر میں داخل ہونا چاہو تو پہلے ذرا کھنکھار لو اور ایسا انداز اختیار کرو جس سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اندر آ رہے ہیں، ایک دم چپ چاپ نہیں، اور دوسرے لوگوں کو تو کوئی بھی ہو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے اس کو فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ قرآن میں باقاعدہ 2 رکوع ان مسائل کے سلسلے میں، استیذان یعنی اجازت حاصل کرنے کے مسائل کے سلسلے میں نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں یہاں تک کہا گیا ہے कि अगर तुम किसी के घर जाओ और उससे इजाजत हासिल करो और वो यूं कहे कि आप वापस जाइए, मैं इस वक्त आपकी मुलाकात नहीं कर सकता। वैदा कील लकुमुर जीव फर्जीव हुआ अजका लक, जब तुमसे यूं कहा जाए कि वापस जाओ तो ये कौन कहता है जिससे इजाजत मांगी, तो बारी ताला कहते हैं फर्जीव। ये दूसरा फर्जीव अल्लाह का हुक्म है कि तुम वापस जाओ, इसी में तुम्हारे लिए भलाई और खूबी है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बहुत से मिलने वालों के घर पर इसी तमन्ना के साथ गया कि मैं उनसे इजाजत हासिल करूं और वो मुझे ना कहें और उनके ना कहने पर मैं वापस जाऊं तो अल्लाह के इस हुक्म पर फर्ज ऊपर क्या हो जाए, अमल हो जाए। ऐसे लोग भी थे जिनकी ये तमन्नाएं हुआ करते। आज हम जैसे जो है ना वो मखमूर और जो है वो मुतकब्बिर किसी दोस्त के यहाँ भी जावे और अगर वो कह दे कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता तो शायद जिंदगी भर उससे बात नहीं करेंगे। ये इस्लाम का, ये इस्लाम की तालीमात नहीं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा के यहाँ जब जाते थे तो उनसे इजाजत हासिल करने का एहतमाम करते थे। एक मर्तबा एक सहाबी के घर पर आप तशरीफ ले गए और इजाजत हासिल करने के लिए, इजाजत हासिल करने का तरीका भी हदीस में ये बताया गया है कि अस्सलामु अलैकुम। उस जमाने में कोई घंटी वंटी तो थी नहीं, अस्सलामु अलैकुम की आवाज ये गोया इजाजत हासिल करने के लिए। बाद रिवायतों में ये भी है कि पहले सलाम पढ़े और फिर कहे अदखुलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो पहले सलाम करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत हासिल करने के लिए सलाम किया। वो सहाबी अंदर मौजूद थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम उन्होंने सुना। सलाम क्या है, सलाम में तो बड़ी दुआएं हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। आज हमने तो इस सिलसिले को छोड़ ही दिया। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा आए और आपका पहला क़याम कुबा में रहा, मुझे मालूम हुआ, मैं अपने बाग में खजूर तोड़ रहा था, पता चला कि आप तशरीफ लाए, तो इन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं था, ये तो यहूदी थे। तो कहा मैं फौरन दौड़ा हुआ गया, मैंने मेरी नजर दूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी। फरमाते हैं फलम्मा रायत वजहु अरफ्त अन्नहु लैस बिवजहि कज़्ज़ाबिन, जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो मुझे मेरे दिल ने इस बात का यकीन कर लिया कि ये झूठे आदमी का चेहरा नहीं। दूर से फिर जब करीब आया, इतना करीब आया कि आप जो बात इरशाद फरमा रहे थे वो मेरे कानों में पड़ी, तो सबसे पहली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेरे कानों में पड़ी वो क्या थी, अय्युहन नास अतिमु ताम वाफशु सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिललैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये लोगो क्या क्या फरमा रहे थे, अय्युहन नास अतिमु ताम, खाना बहुत बड़ी नेकी है खाना खिलाना, कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इंसान हो जानवर हो, भूखे जानवर को भी खिलाओगे ना, भूख प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर एक ऐसी औरत जो फाहिशा थी अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी और जन्नत में दाखिले का फैसला कर दिया। ये हर कुत्ते जैसा जानवर जिसको लोग अपने पास आने नहीं देते, भगाते हैं, लेकिन ऐसे प्यासे कुत्ते को भी। दोबारा वाकया ये है कि ये नेकी ये काम हम लोगों ने आजकल छोड़ दिए हैं, इधर हमारा ध्यान नहीं जाता, समझा कि नहीं। हालांकि ये खाना खिलाना उसके लिए कोई शानदार दावत करना जरूरी नहीं, बस उस भूखे की जो है भूख दूर हो जाए, जितना भी आपकी ताकत हो इस्तेआत हो, ये कोई चार रोटियां देना भी जरूरी नहीं, आपके पास आधी रोटी है तो वो ही दे दो। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए वही तैमून अल्लाह के बंदे जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, गरीबों को और यतीमों को और कैदियों को, कैदियों को खिलाने की भी बड़ी ताकीदा जो है, बड़ी जो है ताकीद आई है और उसकी बड़ी फजीलत आई। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा। और फिर खाना खिलाने के बाद भी क्या कहते हैं, हम खालिस अल्लाह के लिए तुमको खिलाते हैं, तुमसे जो है ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, कोई बदला बल्कि शुक्रिये के अल्फाज भी हम तुमसे मांगते नहीं। हमारा हाथ तो यह है कि किसी को जरा दो पैसे दे दिए ना, तो अंदर से यूं चाहते हैं जरा हमारा शुक्रिया लाउड स्पीकर पर स्टेज पर खड़ा होकर के शुक्रिया अदा करें, हजरत आपका बड़ा शुक्रिया। हम लोग ऐसा इखलास तो हमने रुखसत ही कर दिया है, अल्लाह के लिए कोई काम करना तो हमारे मिजाज में, कोई छोटा सा काम करेंगे तो अभी दिल में पता नहीं क्या नीयत हो, नहीं कोई भी काम करो अल्लाह को राजी करने के लिए उसके लिए। तुम्हारा मैं यह अर्ज कर रहा था कि सलाम अफशुस सलाम, हुजूर ने क्या फरमाया, खाना खिलाओ सलाम को फैलाओ, वसीलुल रहम और रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम, और रात के वक्त जब लोग सोए हुए हो उस वक्त नमाज पढ़ो तहज्जुद पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। ये शरीयत ने जो है ना सलाम को फैलाने की जो है बड़ी ताकीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल अमल अफ़ज़ल, कौन सा अमल बेहतरीन है, उन्होंने फरमाया कि जिसको पहचानते हो तो भी और न पहचानते हो तो भी सलाम करो। आजकल एक और मुसीबत आ गई, सलाम किसको करते हैं, पहचान वाले को, हालांकि सलाम तो करना चाहिए हर मुसलमान, जिसका मुसलमान होना हमें अंदा उसके चेहरे मोहरे से टोपी है दाढ़ी है कपड़े देख करके अंदाजा होता है, या कपड़े जैसे भी, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, मुसलमान है। सलाम करो हर एक को, पहचानो या ना पहचानो, लेकिन नहीं, हदीस में कयामत की निशानियों में से एक बताई गई है कि कुर्ब कयामत में लोग सलाम करेंगे पहचान की बुनियाद पर। हमारे एक दोस्त लतीफा सुनाते हैं कि एक आदमी ने एक और सांप को देखा, बाद में तो चेहरे में हमको क्या पड़ जाता है, भूल पड़ जाती है ना शबाहत की वजह से, हम समझते फलाना आदमी है और वो नहीं होता, मिलता जुलता चेहरा होता है। एक साहब ने दूसरे को सलाम कर दिया ये समझ करके ये हमारे फलाने साहब हैं, फिर जरा करीब देखा तो कहे तो कोई दूसरा है, कि माफ करना माफ करना मैं समझा फलाना साहब, गया सलाम करके कोई जुर्म किया है भूल कर दी, नहीं भाई सलाम करो। देखो कितनी अजीब गरीब तालीम है, इस सलाम में तीन दुआएं हैं, आज अगर सलाम का रिवाज पड़ जाए हर आदमी सलाम करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दुआएं दे रहा है तीन दुआएं, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो और उसकी बर, वो जवाब में कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हर आदमी आप अंदाजा लगाओ दिन में 100 आदमियों के साथ आपकी मुलाकात हुई और आपने उनको सलाम किया और उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, 100 दुआएं 200 दुआएं आपकी तरफ से, 100 और उनके जवाब में। जिस मुआशरे में ऐसी दुआएं अल्लाह के रहमत के नुज़ूल की एक एक दिन में सैकड़ों हो जाए, कैसी रहमतें अल्लाह की नाजिल होंगी। आज हमने सलाम की आदत छोड़कर अल्लाह की रहमतों से अपने आप को महरूम कर दिया। जरूरत है, इसको आम करो, करोगे या नहीं? बड़ी फजीलत का अमल है। हजरत शाहजाउल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये ऐसा अमल है, देखो बाज अमाल ऐसे है अल्लाह के यहाँ कि उनको करने की वजह से दूसरे अमाल की अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। तो ये सलाम वाला अमल ऐसा है, हजरत हरदोई फरमाया करते थे कि अगर तुम आदत डाल लो उसकी, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला तुमको दूसरे नेक अमाल की तौफीक देंगे। ये तो गोया हम खुरमा वो हम सवाब, सलाम का सलाम, दुआ की दुआ और दूसरे अमाल के दरवाजे हमने अपने लिए क्या कर दिए। हो घरों में जाओ, जाओ अपने घर में जाओ तो भी घर वालों को सलाम करो। हदीस में आए अपने घर वालों को भी सलाम नहीं करते। एक जगह मसला बयान किया, भाई तुम घर में जाओ तो सलाम करो, एक साहब ने बयाना हूं सलाम करवाना। वह उस बिचारी को तो इस काबिल भी नहीं समझा कि उसको सलाम किया जाए। अल्लाह अकबर, जो 24 घंटे आपकी खिदमत में खड़े पांव रहती है उसको भी आप सलाम वाली दुआ देने के लिए तैयार, कैसा हमारा मिजाज बन गया। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमावे। दोबारा मैं तो यूं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के मकान पर तशरीफ ले गए और आपने सलाम की अकाई के लिए इजाजत हासिल करने के लिए, सहाबी अंदर थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकले हुए सलाम को सुना, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? वो जानते थे कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत के मुताबिक दूसरी मरतबा सलाम करेंगे, गोया हुज़ूर की दूसरी दुआ मिलेगी। ये दुआ तो बड़ी कीमती है ना हुज़ूर की ज़माने मुबारक से। तो सहाबा तो इसके लिए तैयार रहते थे, लालची रहते थे, तो उन्होंने जवाब दिया। चुनांचे जैसी तवक्कु थी हुज़ूर ने दूसरा सलाम किया, फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर आदत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सलाम किया और वापस लौट कर जाने के लिए मुड़े ही थे, वो सहाबी जल्दी से घर में से निकले और हुजूर से लिपट गए और माजरत चाही कि अल्लाह के रसूल, मैं सुन रहा था, अंदर आपके सलाम का जवाब भी दे रहा था, लेकिन मैंने इसलिए दरवाजा नहीं खोला कि इस उम्मीद में और इस तमन्ना में कि अगर मैं नहीं दूंगा खोलूंगा दरवाजा तो आपका दूसरा और तीसरा सलाम की शक्ल में मुझे दुआएं मिली। ये है सहाबा का निजार। और ये बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हजरत अबू सैद हजरत अबू सैद खुदरी के सिलसिले में, हजरत अबू मूसा अशअरी एक बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में उनके दौरे खिलाफत में उनके यहाँ गए। हजरत उमर खिलाफत के कामों में, सरकारी कामों में मशगूल थे, आवाज था ही उनके कान में, लेकिन उन्होंने यूँ सोचा होगा इधर मैं अपने इस काम से फारिग हो जाऊं तो फिर उनको बुलाता हूँ, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला उन्होंने दूसरा सलाम किया तो भी जवाब नहीं दिया, बुलाया नहीं, तीसरा करके वो तो चले गए। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्हों जब अपने काम से फारिग हुए तो उन्होंने कहा, भाई अब्दुल्लाह इब्न कैस को बुलाओ। ये अब्दुल्लाह इब्न कैस नाम है किसका? हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला, उनको बुलाओ। देखा कि वो नहीं है, लोग बुला करके लाए। अब अगर वो यूं कहते आकर के कि आप मशगूल थे इसलिए मैं चला गया तो कोई बात नहीं थी। इन्होंने पूछा तो तुमने पूछा क्यों चले गए वापस? کا ہم کو نبی, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کسی کے ہاں جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سلام کیا, نہیں ملی اجازت تو دوسری مرتبہ سلام کرو, اس پر بھی اجازت نہیں ملی تو تیسری مرتبہ سلام کرو, اب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کبھی سنی نہیں, حالانکہ یہ روزمرہ کی حدیث ہے, یعنی اس حدیث کا تعلق روزمرہ کے معاملے سے ہے, لیکن اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود ان کے کان میں یہ حدیث پڑی نہیں, یہ جانتے ہی نہیں تھے اس کو. پہلی مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سلسلے میں بڑی احتیاط برتتے تھے, کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ حضور نے یوں فرمایا, اب وہ ان کے امام ہے تو بات ٹھیک ہے, اگر وہ چیز ہے جو کہی حضور نے یہ فرمایا وہ حضرت عمر کے علم میں نہیں ہے, پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, تو حضرت عمر اس سے مطالبہ کرتے تھے دوسرا ایسا آدمی لاؤ جو یوں کہے کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اس لیے میں تو چلا گیا, اب یہ حدیث کبھی حضرت عمر نے سنی نہیں تھی. تو دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے, وہاں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ارشادات سب کو معلوم نہیں تھے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو حضور کا یہ ارشاد جو روزمرہ کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے معلوم نہیں تھا. خیر تو جب انہوں نے پہلی مرتبہ سنا تو حضرت ابو موسیٰ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی, مطالبہ کیا کہ کسی اور نے بھی سنا اور لاؤ میرے پاس. اب حضرت عمر کا مزاج حضرت ابو موسیٰ بھی جانتے تھے کہ اگر دوسرا گواہ لا کر کے پیش نہیں کروں گا تو حضرت عمر جو ہے سزا دیں گے, کوڑے سے خبر لیں گے. وہ گھبرائے ہوئے مسجد نبوی میں گئے, وہاں دیکھا کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ قرائے صحابہ میں سے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا اقرؤہم عبی, صحابہ میں قرآن کے جاننے قرآن پڑھنے کے جاننے والے سب سے زیادہ کون ہیں, حضرت عبی بن کعب ہیں. بخاری ہی میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبی کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. تو حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میرا نام لے کر اللہ نے کہا, میرا نام لے کر کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا. جب یہ جواب سنا تو مارے خوشی کے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, بہت بڑے صحابہ میں بڑے عالم سمجھے, فتوا دیتے جو لوگوں کے مسائل کا حل کرتے تھے. تو بہرحال جو حضرت ابو موسیٰ اشعری جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے ہیں تو دیکھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ لگا ہوا ہے اور انصار آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں. وہاں تو وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری, اور جا کر کے جب وہ کھڑے ہو گئے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تم میں سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ کوئی کسی کے یہاں جاوے تو اجازت لینے کے لیے ایک مرتبہ سلام کرے, نہ ملے تو دوسری مرتبہ کرے, نہ ملے تو تیسری مرتبہ کرے, پھر واپس چلا جائے؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہاں جتنے بھی ہیں سب نے یہ سنا ہے. ان کے حلقے میں جتنے بیٹھے تھے نا شاگرد حضرات انصار سب نے حضور کا یہ ارشاد سنا ہے کہ مہربانی کرو نا, کوئی ایک آدمی میرے ساتھ چلو اور امیر المومنین کے پاس آ کر گواہی دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا इस मजलिस में जो सबसे छोटा आदमी है, कम उम्र, उसको हम आपके साथ भेजते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी को कहा जाओ तुम, वो सबसे छोटे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, कम उम्र साहबा उस वक्त थे, बाद में तो अल्लाह ने उनको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। तो बहरहाल ये हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, वो इस हदीस के रावी हैं जो अभी मैंने आपके सामने सुनाई। क्या है हदीस? उसका हदीस तो आपको सुना दी, लेकिन चूंकि अरबी में थी तो बहुत सो को पता नहीं चला होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मन अकला तैयबन, जिस आदमी ने हलाल गिजा खाई, वह अमिल फी सुन्नति, और सुन्नत के मुताबिक अमल किया, वह अमिन नास बवाए कहू, और लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईजाओं और तकलीफों से मामून और महफूज रहे, दखल जन्ना। हुजूर ने फरमाया वो आदमी जन्नती है। मजलिस में एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, इन्ना हाज़ा यौम फिन्नास लकसीर, कि अल्लाह के रसूल ऐसे लोग तो आजकल बहुत है, जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और सहाबा की जमात में ऐसे लोग बहुत नहीं होंगे तो कब होंगे, हमारे जमाने में होंगे। तो ने जवाब में फरमाया सयकून फी कुरूनी बादी, हैं अभी बहुत, आइंदा जमाने में भी होंगे, चाहे इतनी कसरत से न हो लेकिन होंगे। तो ये तीन बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई, जन्नत में दाखिले का बहुत आसान नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया। क्या? पहली बात हलाल गिजा खाई, दूसरी बात सुन्नत के मुताबिक अमल किया, और तीसरी बात लोग उसकी ईजाओं से मामून और माहून, किसी को भी कोई तकलीफ, आंख भी नहीं दिखाई किसी को, मानना तो डर ही ना, किसी को उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं। बाद लोग ऐसे होते नहीं, हर आदमी जमा इससे कोई कभी तकलीफ पहुंचेगी, हर एक को इत्मीनान होगा, कैसा आदमी हो। दोबारा ये तीन चीजें जिसके अंदर होगी वो जन्नत। पहली बात क्या फरमाई? मन अकला तैयबन, जिसने हलाल गिजा खाई। भाई हलाल गिजा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हलाल कमाई, हलाल तरीके से आप रुपया कमाओ, रोजी कमाओ, और उससे जो खाना खरीदो वो है हलाल गिजा। समझना है कि नहीं? हलाल गिजा का मतलब समझो, क्या हलाल रोजी जो है, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। शरीयत ने पैसा कमाने के लिए जो उसूल बतलाए, किसी को धोखा नहीं, किसी से सूद नहीं लिया, किसी से रिश्वत नहीं ली, कहीं चोरी नहीं की, कहीं हाथ नहीं मारा किसी के ऊपर, कुछ नहीं, बस सही तरीके से शरीयत ने माल हासिल करने के जो तरीके बताए उसके मुताबिक कमाया। कयामत के रोज अल्लाह तबरक ताला के हुजूर जब आदमी पहुंचेगा ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले पांच चीजों का सवाल होगा। फजाइल सदकात में आपने ये पढ़ा और सुना होगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौम अल-क़ियामति हत्ता युसअलान खमसा। क़यामत के रोज इंसान के कदम अल्लाह के पास से हट नहीं सकेंगे, यहाँ तक कि उससे पांच चीजों के मुतालिक सवाल होगा। पांच चीजों में दो सवाल माल के मुतालिक, किसके मुतालिक? माल के मुतालिक। पहला सवाल ये होगा कहाँ से कमाया, और दूसरा कहाँ खर्च किया। बाद लोगों को बड़ी गलतफहमी होती कि हमने अब मेहनत करके हलाल तरीके से कमाया है, हम जिस तरह चाहें। नहीं भाई, खर्चा करने में भी तुम्हारा साथ नहीं, खर्चा भी उसी तरह करना पड़ेगा जो क्या है, अल्लाह ने बताया, शरीयत ने बताया, अपनी जात पर भी जरूरत से ज्यादा अगर खर्च करोगे, जिसको क्या कहते हैं, फजूल, तो वो भी नाजायज, वो भी नाजायज। तो जब अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना जायज नहीं है तो और जगह कैसे होगा। इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन तबज़ीर, ये भी फजूल खर्ची। फजूल खर्ची दो तरह की होती है, एक जायज जगह में जरूरत से ज्यादा खर्च करना, उसको कहते हैं इसराफ अरबी में। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ फजूल खर्ची मत करो, ये हलाल जगह। और इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले तबज़ीर, नाजायज जगह पर पैसा खर्च करना। शादी के अंदर जो है बैंड ले आए, नाचने वाली ले आए, नाजायज तरीके से, ये जो इसको क्या कहते हैं, तबज़ीर। ये दोनों की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो माल कहां से कमाया, मिनाई ना इक्तसबहू वफीमा अनफकहू, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। तो कयामत के रोज माल के मुतालिक पहला सवाल यही होगा, हलाल तरीके से कमाया था या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल गिजा खाई। हलाल गिजा कब होगी, जब रोजी और उसकी कमाई क्या होगी, हलाल होगी। रिश्वत नहीं लेगा, सूद नहीं लेगा, गसब नहीं करेगा, लोगों को अपनी तिजारत में धोखा नहीं देगा, किसी गलत तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनर को धोखे में रख कर के चुपके से अपनी जेबें नहीं भरेगा। समझाया क्या नहीं, कुछ आजकल तो लोगों ने धंधा ही बना लिया है, किसी भी तरह जो है पैसा चाहिए हमको, लाओ पैसा लाओ। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई, बुखारी शरीफ की रिवायत है, याती अलन्नास ज़मान ला युबादिल मरो मा खदा मिनहु मिनल हलाल अम मिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी जहां से माल लेगा कोई परवाह नहीं करेगा कि हलाल तरीके से लिया या हराम। पैसा चाहिए बस, आज का क्या मिजाज देख रहे हैं आप, पैसा लाओ पैसा लाओ। हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई। हालांकि एक दौर वो था हमारे असलाफ का कि वो हराम की एक पाई को भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। हराम तरीके से जो पैसा आता था, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि आप कपड़े के ताजिर थे, कपड़ा आप बेचा करते थे, तो आपका एक पार्टनर था हफ्सा इब्न अब्दुल रहमान। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़ों के चंद थान ताके उनके पास भेजे कि भाई देखो इसमें फुलाना थान जो है ना ताका, उसमें जरा सा ऐब है, जब ये बेचो ना तो खरीदार को बता देना। यही शरीयत हमें कहती है कि जब दो आदमी आपस में सौदा करें ना तो हर एक सच बोले, क्या बोले, सच बोले, और जो कमी है अपने अपनी चीज में, खरीदार के पैसों में कमी कुछ ये है तो वो बताए, और या बेचने वाले के माल में कुछ है तो बतावे। दोनों अगर सच बोलेंगे और अपनी चीज का जो ऐब है वो जाहिर कर देंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे, और अगर कोई एक भी झूठ बोलेगा तो बरकत, आज क्या हो रहा है, बरकत तो कहीं नजर ही नहीं आएगी। क्यों, कोई एक पार्टी जरूर गड़बड़ तो करती है, छुपाती है अपने से, पुराने लोग उसको खोल कर ये ले ये है देखो, वो लेना हो तो ले, ना लेना हो तो ना ले, बता दिया उसको। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पार्टनर को कहा देखो जब बेचो तो खरीदार को बता देना। अब उन्होंने बेचा खरीदार को, अब जिस वक्त बेचा उनको वो बतलाना याद नहीं रहा, ऐसा नहीं कि जानबूझ के छुपाया, ऐसा नहीं, भूल गए बतलाना। और वो माल सारा बेच डाला। 20,000 दिरहम कितना? आजकल के हिसाब से तकरीबन 65 किलो चांदी आती है उससे। कितनी? 65 किलो चांदी। वो 20,000 दिरहम में बेच कर वो दराहिम लेकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सवाल किया, वो ऐप बताया था। इन्होंने कहा वो तो मैं भूल गया। भूल गया का कहां है खरीदार? तलाश किया, पता नहीं चला। वो पूरी रकम इमाम साहब ने सदका कर दी, अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं डाला। इतना ज्यादा है इमाम काय का हलाल का कमाई का। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल हलाल फरीजतुन बादल फरीजा। हलाल कमाई ये इस्लाम के बुनियादी फराइज के बाद एक अहम फर्ज है। इस्लाम के 5 बुनियादी फराइज तो सब जानते हैं। बोले अल इस्लाम वाला खमसीन, बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नमाज का कायम करना, रोजे रखना, ज़कात अदा करना और इस्तेआत हो तो हज करना। ये 5 चीजें जो है इस्लाम की बुनियादी फराइज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम के बुनियादी फराइज के बाद हलाल कमाना ये भी एक फर्ज़ है। उसका दर्जा बात का है। ये इसलिए बताया कि हलाल कमाने के लिए भी इन फराइज में कमी नहीं करते। आप हलाल तरीके से तिजारत करते हैं, नमाज का वक्त आया तो बंद करो दुकान, जाओ वजी। अब किस कोई कहे आपको मैं तो हलाल तरीके से, अरे भाई हलाल तरीके से कमाता है तब भी नमाज के लिए तो जाना ही पड़ेगा, दुकान को ताला लगा। ये इसका दर्जा नंबर 2 पर है। किसका? कमाई का। उसके लिए उन बुनियादी फराइज को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो बहरा कहने का, या कोई आदमी की नौकरी है, उस नौकरी में वो क्या कर रहा है? नमाजें छूटती है, छुट्टी नहीं मिलती, वही मिल तरबुल हलाल फरीजा तुम बालल फरीजा, वो पहले है। इसके खातिर अगर आप ये करेंगे तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती आप। तो बहरहाल ये हलाल कमाई उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी हैसियत अता फरमाई। क्यों? इसलिए कि किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी माशरे का सलाह व फसाद, उसका ठीक होना और उसका बिगड़ना मौकूफ है काई के ऊपर, कमाई पर। कमाई पर, कमाई शरीयत के मुताबिक है तो वो समाज क्या होगा? दुरुस्त होगा, हाँ गड़बड़ नहीं होगी उसमें। और कमाई अगर गड़बड़ वाली है तो समाज बिगड़ जाएगा। आज हमारे समाज में बिगाड़ आया, बहुत से असबाब है उससे, एक नहीं, उसमें से एक सबब ये भी है। कौन सा? कमाई। कमाई के मामले में बेहतियाती, ये सारी बुराइयां जो हम देख रहे हैं ना, वो सब उसी के नतीजे है। तो हकीकत तो यह है कि कमाई को हलाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है। कितने बजे अजान? तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला की जात पाक है और वो पाक चीज को ही कबूल करते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो ना तो कैसा होना चाहिए? पाक। पाक याने हलाल तरीके से कमाया हुआ, जरा भी गड़बड़ वाला होगा अल्लाह को जरूरत नहीं उसकी। आजकल तो लोग बड़े लोग ही फलसफी बन गए, क्या कि भाई किसी को मार दो, हैं, पांच दस लाख किसी के उड़ा लो सुला दिया ना, अब ये पांच दस लाख में से 50,000 या 1,00,000 की से में दे दो गरीबों को दे दो, तो गोया वो बाकी क्या हो जाएगा? बात कोई कुछ नहीं, ये गलत है, ये और मुसीबत, ये और मुसीबत। हजरत सुफियान सॉरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, सूफी भी हैं, क्या फरमाते हैं कि भाई जो है कोई कपड़ा अगर नापाक हो गया, आपका कपड़ा नापाक हुआ तो वो पेशाब से पाक होगा? कोई आदमी अपना नापाक कपड़े को पेशाब से धोए तो पाक होगा? नहीं भाई, तो और नापाक हो जाएगा, तो पानी से ही पाक होगा। तो जो हराम माल है वो हराम तरीके से अगर आपने उसको अल्लाह के खैर खराब किया तो उससे और खराबी। हमारे बुजुर्गों के यहाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा तिर्मिजी शरीफ की पहली रिवायत है, लातुकबलु सलातु बगैर तुहूरी वला सदफतु मिन गुलूली, बगैर पाकी के नमाज कबूल नहीं होती, और हराम माल में से सदका किया जाए तो वो कबूल नहीं होता। ऐसा मत समझना कि कुछ दे दिया तो ठीक ठाक हो गया, ये तुम्हारा फलसफा है, इस्लाम का फलसफा नहीं है। इस्लाम तो ये कहता हुजूर का इरशाद है, इब्ने मसूद की रिवायत मिश्कात में है कि कोई आदमी अगर हराम माल में से सदका करता है तो वो कबूल नहीं होता, खर्च करता है तो उसमें बरकत नहीं होती, और अपने पीछे ये हराम कमाई छोड़ करके जाएगा तो उसके लिए वो जहन्नम का तोशा बनेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसे नापाक चीज की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह की जात पाक है, वो पाक चीज को ही क्या करते हैं, कबूल करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सूफी भी हैं, फकीह भी हैं, इमाम है फिका के, फरमाते हैं कि किसी का एक दिरहम मेरे पास अगर आ गया है तो उसको वापस करना 1,00,000 दिरहम का सदका करने से मेरे नजदीक बेहतर है। किसी का 1 रुपया गलत तरीके से आपके पास आ गया हो तो उसके उस रुपये को मालिक को वापस करना 1,00,000 रुपये का सदका करने से बेहतर। फिर आगे फरमाते हैं कि किसी का 1 दिरहम वापस करना मेरे नजदीक 2,00,000 दिरहम का सदका करने से बेहतर है। फिर 3, 4, 5, 6 तक पहुंचे, 6 तक पहुंचे। भैया ये आपके पास गलत तरीके से आ गया किसी का 1 रुपया, जल्दी से उस तक पहुंचाओ भाई, बड़ा वबा ही आपके पास, सांप आया है, सांप जैसे आपकी जेब में से पोलिया आ गया हो तो चैन सुकून होगा, अरे नींद हो जाएगी। तो ऐसे ये भी इसको निकालो, जब तक के मालिक को वापस नहीं करोगे वहां तक चैन हासिल नहीं होगा। तो इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी का 1 दिरहम वापस करना मेरे नजदीक 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 दिरहम का सदका करने से भी बेहतर है। उनके हालात में लिखा है वो इल्म हासिल करने के लिए हिजाज गए, हिजाज का सऊदिया कहलाता है, अरबी शरीफ हमारा इलाका, वो रहने वाले थे मरो के, वो जो इस्लामी रियासतें वहां थी ना, ये रूसी वो ईरान से ऊपर का इलाका खुरासान का, वहां के रहने वाले थे। किसी के पास से कलम लिया था उन्होंने लिखने के वास्ते, जब वो इल्म हासिल करके वापिस अपने वतन गए, उस जमाने में सफर के वास्ते हवाई जहाज नहीं थे, कारें नहीं थी, बसें नहीं थी, ऊंट थे या पैदल, तो पैदल ही सफर करते, उनके पास तो ऊंट नहीं। तो जब घर पहुंचे सामान ने देखा कि वो कलम आजकल का कलम नहीं, उस जमाने का काय का लकड़ी का कलम, लकड़ी का छील के बनाते थे। आजकल का तो कुछ कीमत वाला भी होता है, जिसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती, वो तो बहुत कम कीमत। लकड़ी का कलम देखा तो अरे फलाने का सामान, फलाने का कलम मैं तो देना भूल गया। क्या हुआ? फिर अपने वतन से हजारों मील का सफर करके लौटे, उसका कलम वापस किया। अंदाजा लगाओ उन हजरात की निगाहों में कितनी अहमियत थी इसकी, कितनी अहमियत। यानी किसी किसी का माल नाजायज तरीके से, गलत तरीके से अगर हमारे पास आ गया है, लिया ने आ गया है, तो अभी किसी हाल में वो उसको अपने पास रखने के लिए तैयार, उसको पहुंचाने के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक है कि एक मर्तबा कूफा के जंगल में एक काफला लूटा गया डाकुओं ने, काफी जमाने में डाकुओं का होगा, डाकुओं ने काफला लूट लिया। और उस जमाने में काफले का जो सामान होता था उसमें बकरियां भी थी, और बाद में पता चला कि वो बकरियां जो लूटी गई थी वो कूफा के मार्केट में बिकी है, कूफा के मार्केट, वो बाद में पता चला। इमाम साहब को जब मालूम हुआ तो आपने तहकीक की कि भाई बकरी की उम्र कितनी होती है, किसी ने बताया कि 7 साल की है। तो 7 साल तक कूफा में रहते हुए बकरी का गोश्त नहीं खाया, कहीं वो लूट वाली बकरी का गोश्त ना, अपने यहाँ किसी के यहाँ भी ना बकरी का गोश्त नहीं। इतनी ज्यादा एहतियात, इतनी ज्यादा है। हदीस में आता है हुजूर का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबता मिन सौत कुल्लु लहमिन नबता मिन सौत कानती नार औला भी। जिस्म का जो गोश्त हराम माल से पल करके तैयार हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो गोश्त जहन्नम का ज्यादा हकदार है। आपने हिकाया के सहाबा में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा सुना होगा, अंदर है अभी खोल कर देख लो, सुनते हैं। तालीम में भी बैठते हैं लेकिन बस तालीम करने वाला तालीम करता है और हम अपने 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 चक्कर में होते हैं। वो जो कुछ तालीम होती है वो सर के ऊपर से डायरेक्ट कहीं कहीं से कहीं निकल जाती है, एक कान से जाने दाखिल होकर दूसरे कान, याद ही नहीं रहता। इतने सालों से सुनते हैं कितना याद रखा हमने, यही याद। किस्सा क्या है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था जिसको खिराज पर, महसूल पर उठाया था। उस जमाने में एक एक आदमी जंगें होती रहती थी दुश्मनों से, जो कैदी आते थे वो नए गुलाम बनाए जाते थे। एक एक आदमी के पास कई कई गुलाम होते थे। अब वे अपनी खिदमत के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए, घर के कामकाज के लिए कितने 2, 4, 8, 10 गुलाम काफी है, और उसके पास तो है 50 गुलाम। तो अब वो क्या करता था, वो बाकी गुलाम जो होते थे उनको कह देता, भाई तुमको क्या हुनर आता है, कोई दर्जी है तो अपना कपड़ा सी और मुझे रोजाना 200 रुपये दे देना सिलाई में, तू जो सिलाई कमाए उसमें। कोई बावर्ची है, कोई और है, कोई मजदूरी करता है, तेरी मजदूरी में से इतना मुझे दे, इसको महसूल कहते थे, खराज। एक गुलाम था जिसको हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खराज पर उठाया था। एक दिन वो एक खाना लेकर के आया, तैयार खाना, पका हुआ खाना हजरत के सामने रख दिया, और हजरत का फाका था 2-3 वक्त से, इसलिए फौरन उसमें से एक लुकमा लेके मुंह में रख लिया, हलक से उतरा। उस गुलाम ने कहा, हजरत आप तो रोजाना जब कोई चीज मैं लाता हूं तो आप पूछते हैं कहां से लाया, आज नहीं पूछा। हजरत ने कहा, भाई फाका था 2-3 वक्त से, तबियत नहीं थी, उठा लिया, बता कहां से लाया। आज ही मसला खड़ा हो गया, क्या اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں جبکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا کچھ لوگوں کی میں نے کہانت کی تھی. کہانت یعنی آئندہ آنے والی. اس زمانے میں عربوں میں کہیں جوتشی ہوا کرتے تھے, تو میں نے جوتشی کا کام کیا تھا, کسی کو بتایا تھا آئندہ ہی ہونے. حالانکہ میں کہانت جانتا, یہ بھی ایک فن ہے سمجھا کہ نہیں, وہ میں نہیں جانتا. وہ ایک تو غلط, شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی وہ بھی دھوکا کرے گا اور نیم چڑا جیسا ہو گیا سمجھا کہ نہیں. تو میں کہانت جانتا نہیں تھا اور کہانت کی اس زمانے میں جب کوئی آدمی لوگ جاتے تھے کاہن کے پاس تو مجھے کاہن سمجھ کر آئے اور میں نے بتا دیا, دھوکا دیا ان کو. اور ان کے پاس جو لوگ بھی کاہن کے پاس جاتے تھے وہ اس کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے جس کو حلوان الکاہن کہتے تھے, یا کاہن کی خدمت میں پیش کی جانے والی شیرینی. شیرینی ہونا ضروری نہیں, جو چیز بھی دے اس کو حلوان کہتے. اب ان کے پاس بہنے کے لیے کچھ تھا نہیں, انہوں نے وعدہ کیا کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں, آئندہ کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو دیں گے یا آپ کے اس کا بدلہ. کہ آج میں وہاں سے گزر رہا تھا ان کے علاقے میں سے, وہاں کوئی تقریب تھی اور کھانا پکاتا دیگیں چڑھی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے دیکھا, او ہو اچھا وہاں آپ آ گئے, تو آپ کا یہ باقی ہے, وہ تیار کھانے میں سے اتنا مجھے دے دیا ہے اسی کے بدلے. حضرت ابو بکر نے جب سنا والے تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا, فوراً آپ نے منہ میں انگلی ڈالی, وہ ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترا تھا اس کو نکالنے کے لیے قے کرنے کے لیے بہت کوشش کی, ایک ہی لقمہ اور وہ بھی دو تین دن کے فاقے کے بعد گیا تھا, بلا اس سے آسانی سے تھوڑا نہیں کرتا. کسی نے کہا کہ آپ پانی پیو اور پھر قے کرو, چنانچہ ایک بڑے برتن میں پانی منگوایا, پیا اور پھر قے کی, اس کے ساتھ وہ لقمہ باہر آیا. یہ منظر دیکھ کر ایک آدمی نے کہا حاضرین میں سے کہ حضرت ایک تو لقمہ تھا اور اس کے لیے آپ نے اتنی ساری محنت کی تکلیف اٹھائی. اس کے جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی نا وہ میں کہنا چاہتا ہوں. حکایت صحابہ کھول کر کے دیکھ لو کیا کہتے ہیں, اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کے رہتا, یعنی اس کو نکالنے میں میری جان چلی جاتی نا تو بھی میں نکالتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کل لحم نبت من الصحت کانت النار اولا بہ, جسم کا جو گوشت حرام مال سے پل کر کے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ دار ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس سے پل کر کے تیار ہو. ہم اور آپ بھی سنتے ہیں حضور کا یہ ارشاد, ہم بھی سنتے ہیں نا, لیکن کیا اس کا اتنا اثر لیتے ہیں جو ان حضرات میں نہیں آتا. یہ ہوا ہے اہتمام حرام سے بچنے کا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے, اور ایک ایک دانہ بھی حرام کا وہ کھانے کے لیے تیار. یہی وہ چیز, یہ چیز ایسی ہے اگر حلال کا ہمیں اہتمام کرنا سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. یہاں میں کبھی جو ہے نا نمازوں کا جی نہیں چاہتا, طبیعت کیا ہو جاتی ہے سست ہو گئی ہے یا نہیں, طبیعت میں جو ہے وہ ساری ساتھ. حضرت حکیم الامت نور اللہ وقدو فرماتے ہیں حرام غذا سے چار نقصان ہوتے ہیں. پہلا, دل کا نور نکل جاتا ہے. دوسرا, طبیعت کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا, آدمی کے دل میں وسوسے اور برے خیالات آنے لگتے ہیں. اور چوتھا, نیکی کی طرف سے طبیعت हट जाती है। आज हम लोग बड़े इरादे करते हैं, ये करें वो करेंगे, मैं में बैठते हैं, तकरीरें सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, तो दिल में बड़े इरादे करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अमल नहीं होगा। अमल का मरहला जब आता है तो वहां बिल्कुल हम बेबस हो जाते हैं। क्यों? इसी गिजा की कमजोरी का असर। ये गिजा अगर हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी हलाल खिलाएं और खुद भी हलाल खाएं, तो सारे मसाइल हल है, सब ने खुद ब खुद ने, खुद ब खुद ने सारे ने। अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका जुमला इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एहयाउल उलूम के अंदर नकल किया है, मन अकल अल हराम असद जवारे हु शाहम अबा अलेमाम लम यालम, जिसने हराम गिज़ा खाई उसके आज़ा अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, वो आदमी चाहे या न चाहे, उसको मालूम हो या न चाहे तो भी गुनाही होंगे उससे। हराम गिज़ा की खासियत, हराम लुकमा लिया उससे जो खून बनेगा, जो ख्यालात होंगे वो यही कौन से गुनाह वाले, वो नेकी तरफ नहीं ले जा सकते, इसका कुदरत ही ऐसा है। भाई आपने कोई जो है बिगड़ा हुआ खाना खाया तो क्या होगा, उसकी वजह से तबीयत खराब होगी या नहीं होगी? ये जिस्म को जिस्मानी नुकसान पहुंचता है, ये रूहानी नुकसान। कौन सा हराम? हराम गिज़ा चाहे देखने में कितनी अच्छी क्यों ना हो, बिरयानी हो, जर्दा हो, पुलाव हो, लेकिन हराम तरीके से आया तो उसका नतीजा यही है, चाहे भूल करके खावे या जान, जहर को यानी जानबूझ के खावे तो भी मरेगा, मरेगा भी नहीं, गुनेगा भी होगा, खुदकुशी का ये उसका गुनाह होगा। और भूल से किसी ने खिला दिया ना खा लिया तो गुनेगार तो नहीं होगा लेकिन मरेगा जरूर। कोई यूं कहे भाई बेचारे को पता नहीं है, बेखबरी में उसके पेट में जहर चला गया, बेखबरी में चला गया तो भी पेट तो जो है उसको ये करके वो मरेगा, वहां बेखबरी से काम चलता नहीं है। हराम लुकमा बेखबरी में पेट में चला गया उससे आदमी गुनाह ही करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं नेक बने तो मन काना करू हलाल अतात हूँ जवारे फिकल खैरा, यही हजरत सालिम अब्दुल्ला फरमाते हैं तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह के, जिसकी गिज़ा हलाल होगी उसके आज़ा फरमाबरदारी करेंगे अल्लाह की और उसको अल्लाह की तरफ से नेकी की तौफीक मिलेगी। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारा घर, हम, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे सब क्या बने, नेक बने, उसका सबसे आसान तरीका यह है, बस उससे बाकी खुद ब खुद अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम करें। जरूरत है इसकी कि हम अपनी कमाईयों को क्या करें, हलाल करें, वरना ये हराम उससे तो इबादत भी कबूल नहीं होती। तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने कोई कपड़ा खरीदा, कुर्ता खरीदा 10 दिरहम में, उसमें 9 दिरहम हलाल और 1 दिरहम हराम, जब तक के वो कुर्ता उसके जिस्म पर मौजूद है उसकी कोई इबादत न नफल कबूल होगी न फर्ज। हराम गिज़ा के नतीजे में दुआ भी कबूल नहीं होती, दुआ भी रद्द कर दी जाती है, कोई इलाज ही नहीं सिवाय इसके कि उसको छोड़ो, तौबा करो और हलाल को अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। करेंगे एहतमाम, कोशिश तो करें भाई, जान बूझ कर तो हराम न खावे। लोग बोलते भाई कोई जानबूझ करके जहर खाता है क्या, बोलते हैं जानबूझ करके कोई زہر کھاتا ہے کیا؟ زہر نہیں کھاتے لیکن حرام کھا رہے ہیں. یہ حرام تو زہر سے بھی بڑھ کر ہے. زہر سے تو دنیا میں موت آئے گی, آخرت میں تو کوئی گرفت نہیں ہوگی, لیکن یہ حرام تو آپ کو برباد کر کے رہے گا. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ تعالیٰ ہم کو حلال کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو بھی غلط طریقے سے کوئی آیا ہو مال, فوری طور پر مفتیوں سے پوچھو, یہ یہ ہے میری کمائی ایسی ہے. ذرا بھی ہم نوکریاں کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, سروس, وہاں بھی کیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے روزانہ کی, اور 6-7 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 1 گھنٹہ بھاگ جاتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تب یہ تنخواہ تو اس کی پوری لیتے ہیں نا, تو یہ جو کام نہیں کیا نا تنخواہ لی, وہ کیا ہوا؟ وہ حرام مل گیا. کائی کے ساتھ وہ جو 4-8-7 گھنٹے وہ حلال کے ساتھ مل گیا تو اس نے پورے کو کیا بنا لیا. اس لیے کہ قاعدہ ہے بھائی, آپ کے پاس 10 کلو دودھ پاک ہے نا, اس میں 2 قطرے پیشاب ڈال دی تو کیا ہوا؟ کوئی کہے 10 کلو دودھ ہے. ارے 10 کلو دودھ ہو تو ہو, 2 قطرے پیشاب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو بھائی یہ حرام تو ذرا بھی آیا اس میں وہ حلال کو بگاڑے گا. اس لیے حرام سے بالکل بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کرو.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے دربدر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حلال ہی کمائے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما, ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہیں بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو قائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معقولوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, عظیم شر و برائیوں سے پناہ چاہی, اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.